सिया दर्द से तड़प उठी। उसने अपनी चीख गले में ही दबा ली। उस दर्द से उभरी भी नहीं थी कि इनाया के टकराने से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल सामने की टेबल पर जा गिरी। सब बुरी तरह चौंके। अचानक ये क्या और कैसे हुआ किसी को समझ ही नहीं आया। इनाया रुक गई, तुरंत सिया के पास आई। अरे संभल कर, तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं तुम्हें? इनाया उसके पास आई और ऐसा दिखाया जैसे सच में उसकी फिक्र करती हो, फिर उसे पकड़कर हेल्प करने का नाटक किया, जो कि और सिया के कान में फुसफुसाई। और कितना नीचे गिरोगी तुम, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गिराने की जिद में खुद इतना नीचे गिर जाओ कि वापस उठना इम्पॉसिबल हो जाए। सिया की सांसें गुस्से से तेज चलने लगी, इतनी ह्यूमिलिएशन कि उसका चेहरा लाल हो गया। वो इनाया का हाथ झटकते हुए उठने लगी, लेकिन पैर घायल था। जमीन पर रखते हुए दर्द की तेज लहर पूरे बदन में दौड़ गई। वो फिर गिरने लगी कि इनाया ने उसे पकड़ लिया और आराम से चेयर पर बिठाते हुए चिंता भरे स्वर में बोली, तुम यहां बैठो, कहीं दोबारा गिर गई तो इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। टूटी हुई नाक लेकर यहां से जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी। वहां मौजूद लड़कियों ने बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से रोका। वो सब ये बहुत इंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिया को आज कोई उसकी टक्कर का मिला था जिसने उसके गुरूर की धज्जियां उड़ा दी थी। वैसे एक बड़ी ही पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए कट्ठा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। सिया अजीब नजरों से उसे घूरने लगी। इनाया व्यंग्य से मुस्कुराई, तुम्हें समझ नहीं आया? अरे हाँ, तुम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी होगी ना, अंग्रेज की औलाद को हिंदी कैसे समझ आएगी? चलो तुम्हारे लिए इंग्लिश में भी बता देती हूँ। ही हु टेक्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इन टू इट हिमसेल्फ। मतलब तो समझ ही गई होगी तुम। अब जरा कुछ भी करने से पहले इस कहावत को याद कर लेना, तो शायद अगली बार मुंह की खाने की नौबत ना आए। इनाया मुस्कुराई। उसकी स्माइल देखकर सिया के तन बदन सुलग उठा। खौलती आंखों में इनाया के लिए नफरत साफ दिख रही थी, लेकिन इनाया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बड़ी ही अदा से इतराते हुए वहां से चली गई। गुस्से से सुलगती सिया इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद एक सेकंड भी वहां नहीं रुकी। उसने गुस्से से मिसेज रायचंद को देखा, जो खुद कुछ परेशान लग रही थी, और गुस्से में फुंकारते हुए वहां से चली गई। उसके पीछे मिसेज मल्होत्रा भी चली गई। हॉल में पल भर को सन्नाटा छा गया। इनाया दादी के रूम में आई और डोर लॉक करते हुए बेड पर बैठी दादी के पास आकर बैठ गई। इनाया बहू, बाहर क्या हो रहा था? दादी ने चिंतित निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। बाहर से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए वो परेशान थी। कई बार तो उन्होंने बाहर जाकर देखने का सोचा भी, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं था और वो कोई तमाशा भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अंदर ही रहीं। तमाशा हो रहा था दादी, आपको भी वहाँ होना चाहिए था, बहुत मज़ा आता। आप खुद देखती कि आज मैंने सबकी कैसे बैंड बजाई। बड़ा इतरा रही थी खुद पर, मुझे नीचा दिखा रही थी। मैंने एक झटके में सबका घमंड तोड़ दिया। इनाया उनके सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। वो खुद पर इतरा रही थी, जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बाहर से आती आवाज़ों से दादी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनकी पतली सी छोटी सी बहू आज सब पर भारी पड़ी है। ये भी एक वजह थी कि वो बाहर नहीं गई। वो चाहती थी कि इनाया इस सिचुएशन को हैंडल करे, क्योंकि हमेशा वो या कायरा उसके साथ नहीं रह सकते। उसे खुद कॉन्फिडेंस के साथ हर सिचुएशन फेस करना आना चाहिए। आप ठीक है ना? हमें किसी के गिरने की आवाज़ आई थी। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? किसी ने आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा? दादी अब भी परेशान थी। इनाया मुस्कुराई और बेफिक्री भरे अंदाज में बोली, अरे दादी मुझे कुछ नहीं हुआ। गिरी तो वो जो पहले ही अपनी जिद में बहुत नीचे गिर चुकी है, एक शादीशुदा मर्द पर नज़र गड़ाए बैठी है, मुझसे मेरे हस्बैंड को छीनना चाहती है। मैंने भी ऐसा सबक सिखाया है कि याद रखेगी। मुझे सुना दे, किसी में इतनी हिम्मत कहाँ? वो तो मैं थी जिसने बाहर सबकी बोलती ही बंद कर दी। आप देखती हैं उन सबके चेहरे, मुझे जलील करने आई थी। मैंने ऐसा डोज दिया है ना, जिंदगी भर याद रखेंगी और दोबारा कभी मुझसे पंगे लेने से पहले हजार नहीं लाखों बार सोचेंगी। उसके बाद भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि फिर से मुझसे टकराए। इनाया बिल्कुल बिंदास थी, ना कोई चिंता ना फिक्र, इनफैक्ट वो बहुत खुश थी। आखिर उसकी नज़रों में आज उसने काम ही इतना अच्छा तारीफ के काबिल किया था। दादी भी अब कुछ रिलैक्स हो गई। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराई। ऐसे ही रहना, यूं ही सबको जवाब देना, वरना ये चालाक औरतें तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब संभाल लूंगी। इनाया बेपरवाही से मुस्कुराई, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, वैसे दादी एक बात सच सच बताइए, ये पार्टी मेरी इंसल्ट करने, मुझे नीचा दिखाने के इंटेंशन से ही रखी गई थी ना? हम कैसे जानेंगे? इस घर में हमसे पूछकर थोड़े ही सब होता है। इनाया ने मुंह बनाया और उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। मैं तो उतनी सी देर में थक गई। सबने मिलकर मुझे इतना पकाया, मुझसे इतना बुलवाया कि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। कुछ खाना पड़ेगा अब, तभी कुछ एनर्जी आएगी। शाम रात में तब्दील हो चुकी थी, घड़ी रात के 9 बजा रही थी। इनाया अभी भी वैसे ही रेडी थी और दादी के रूम में उनके साथ बैठी कॉमेडी मूवी देख रही थी। अचानक बाहर से आवाज आई। इनाया हंसते हंसते एकदम से रुक गई। उसने टीवी का वॉल्यूम कम किया और ध्यान से आवाज सुनी जो पूरे मेंशन में शांति होने की वजह से अब साफ सुनाई दे रही थी। इनाया पल में आवाज पहचान गई। उसने झट से टीवी ऑफ किया और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। दादी हैरान परेशान से उसे देखते ही रह गई। इनाया बहू, ये तुम क्या कर रही हो? दादी की आवाज कानों में पड़ी तो इनाया ने अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाई हुई सी बोली, दादी आप बाहर जाइए, कायरा आ गए हैं। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहिएगा कि मैं सो रही हूँ। जल्दी जाइए दादी, वरना वो यहीं आ जाएंगे। दादी समझ गई कि उनकी शैतान बहू के दिमाग में फिर कोई शरारत आई है। वो मुस्कुराती हुई रूम से बाहर आ गई। इनाया आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद करके लेट गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में गहरी नींद में सो रही थी। कायरा अंदर आ रहा था जब उसे नितिन का कॉल आया, इसीलिए उसे अंदर आने में थोड़ा टाइम लग गया। पार्टी कब की खत्म हो चुकी थी, सब जा भी चुके थे और सर्वेंट साफ सफाई भी कर चुके थे। कायरा अंदर आया तो उसे लिविंग रूम में दादी अकेली बैठी नजर आई। कायरव ने चारों तरफ नजरें घुमाई, उसे इनाया कहीं नजर नहीं आई तो कदम दादी की तरफ बढ़ा दिए। दादी आप यहाँ अकेली बैठी हैं, इनाया कहाँ है? आज आपकी लाटली बहू आपको कंपनी नहीं दे रही? कायरव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया और उनके पास ही बैठ गया। सर्वेंट जल्दी से उसके लिए कॉफी ले आया। सो रही है वो? सो रही है इस वक्त? कायरव पूरी तरह चौंका और माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उसकी तबीयत तो ठीक है, सब ठीक है, बस आज बहुत थक गई थी तो आराम कर रही है। दादी ने उसकी चिंता दूर कर दी। कायरव थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन जब तक खुद उसे नहीं देख लेता उसे चैन कहाँ आना था। मैं एक बार देख कर आता हूँ, उसके बाद आपके पास बैठकर बात करूंगा। कायरव कॉफी मग रखते हुए उठ खड़ा हुआ। दादी उसकी आंखों की बेचैनी भांप गई, इसीलिए उन्होंने अपनी पलकों को झपकाते हुए इजाजत दे दी। जाओ जाकर खुद से दूर लो, तसल्ली कर लो कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है। दादी की बात सुनकर कायरव झेप गया, शायद नहीं भी जाता, लेकिन दिल के हाथों मजबूर उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। आपके नहीं, हमारे रूम में सो रही है, पीछे से दादी ने कहा। कायरव के तेजी से आगे बढ़ते कदमों को एकाएक ब्रेक लगा। उसने पलटकर दादी को देखा जैसे पूछ रहा हो कि सच में इनाया उनके रूम में है। दादी उसकी आंखों में झलकते सवाल को समझ गई।
पार्टी के बाद हमारे पास आकर बैठ गई थी, काफी थकी हुई लग रही थी, बात करते करते ही सो गई। ओह, कायरव ने अपने कदमों की दिशा बदल ली। इनाया के लिए उसकी परवाह देखकर दादी सौम्यता से मुस्कराई। वो बहुत खुश थी, फाइनली कायरव को उसकी मोहब्बत मिल गई थी, इनाया और उसके बीच सब ठीक हो गया था। अब तो वो बेसब्री से ये देखने का इंतजार कर रही थी कि इनाया के इस नाटक का क्या अंजाम होने वाला था। कायरव ने दादी के रूम के डोर को धीरे से खोला कि कहीं इनाया की नींद खराब ना हो जाए। दूर से उसे ब्लैंकेट में लिपटी इनाया नजर आई। वो थोड़ा पास आया और नज़र इनाया के वजूद पर पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं और वो इंटेंस निगाहों से उसे देखते हुए उसकी तरफ पढ़ने लगा। टू बी कंटिन्यूड।